ये आकाशवाणी है। अब आप कनक लता से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्प विकसित और विकासशील देश ग्लोबल साउथ की स्थिति पर बल देते हुए ब्राजील के रियो डे जनेरो में G20 शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। भुखमरी और निर्धनता के विरुद्ध लड़ाई और सामाजिक समावेशन पर आयोजित सत्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने वैश्विक संघर्षों का ग्लोबल साउथ के देशों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान लिए गए जन केंद्रित निर्णयों को आगे बढ़ाने के लिए ब्राजील की सराहना भी की। उन्होंने भारत के G20 विषय पर एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की टिकाऊ प्रासंगिकता की पुष्टि की। श्री मोदी ने समावेशी वैश्विक शासन सुधारों का आह्वान किया। ये शिखर सम्मेलन 80 राष्ट्रों के समर्थन से निर्धनता और भुखमरी से निपटने के लिए वैश्विक गठबंधन के शुभारंभ का साक्षी बना। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस पहल को सराहनीय बताया। भारत की घरेलू उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पिछले दशक में 25 करोड़ से अधिक लोगों को निर्धनता से उबारा गया है। देश में 80 करोड़ नागरिकों को निशुल्क अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है, वहीं 55 करोड़ नागरिकों को विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया गया है। श्री मोदी ने अफ्रीका और अन्य क्षेत्रों को दी जाने वाली सहायता सहित वैश्विक खाद्य सुरक्षा में भारत के योगदान को भी साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को इसमें शामिल करके एक ऐतिहासिक पहल की है। आज G20 शिखर सम्मेलन का दूसरा दिन है, जहां प्रतिभागी अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
G20 शिखर सम्मेलन में पहले दिन जहां एक ओर भूख और गरीबी पर वैश्विक गठबंधन और वैश्विक शासन संस्थानों में सुधार पर सफल सत्र आयोजित हुआ, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी ने कई द्विपक्षीय सम्मेलनों में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने नॉर्वे, पुर्तगाल, इंडोनेशिया, फ्रांस, इंग्लैंड के राष्ट्र अध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करी। दिन का प्रमुख आकर्षण G20 2024 शिखर सम्मेलन के लिए रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र रहा, जिसमें सतत विकास, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक स्वास्थ्य, आर्थिक सुधार और बहुपक्षवाद के भविष्य सहित कई मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, ब्राजील।
इंग्लैंड के प्रधानमंत्री किर स्टार्मर ने अगले साल की शुरुआत में भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA के बारे में बातचीत को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद कहा कि भारत के साथ एक नया व्यापार समझौता इंग्लैंड में नौकरियों का सृजन करने में मदद करेगा और देश भर में विकास तथा अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन किया। श्री शाह आज गुजरात में कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना के द्विवार्षिक कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन में भारतीय वायुसेना के परिचालन तैयारियों की समीक्षा की जाएगी, जिसमें उत्तरी सीमाओं पर सर्दियों के दौरान होने वाले अभियानों पर विशेष जोर दिया जाएगा। सम्मेलन का समापन कल होगा। झारखंड और महाराष्ट्र में कल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। झारखंड में दूसरे चरण में 12 जिलों के 38 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। महाराष्ट्र में एक ही चरण में सभी 288 सीटों के लिए मतदान होगा। दोनों राज्यों में मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। चार राज्यों की 15 विधानसभा सीटों और एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भी कल वोट डाले जाएंगे। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए सभी न्यायाधीशों से कहा गया है कि वे जहां भी संभव हो वर्चुअल सुनवाई की अनुमति दें। मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ के समक्ष सर्वोच्च न्यायालय की बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल सहित वकीलों ने दिल्ली और NCR में बिगड़ते प्रदूषण का जिक्र किया और इसे निपटने के लिए तत्काल उपाय करने की मांग की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।